بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ فرزند رسول جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، اس مناسبت سے ہم آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں کم سن انسانی حقوق کی کارکن اور طالبہ ملالہ یوسف زئی پر دہشت گردانہ حملہ اور پاکستان کی سیاست میں اس کے اثرات۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں کم سن طالبہ اور انسانی حقوق کی کارکن ملالہ یوسف زئی پر دہشت گردانہ حملہ۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں اور ملاحظہ کر لیں۔ اگرچہ آپ ہماری گزشتہ نشریات اور پروگراموں میں یہ اعلان سنتے آ رہے ہوں گے، پیر 15 اکتوبر سے ہارٹ بٹ پر ہماری نشریات بند کر دیے جانے کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپی کمیشن نے یوٹل سیٹ کو آرڈر کیا ہے کہ وہ ایران کی نشریات بند کر دے، روک دے۔ ظاہر ہے کہ یہ یورپی اور مغربی ملکوں کی آزادی اظہار رائے کا ایک اور انداز ہے۔ بہرحال، یہ ہاٹ بٹ پر ایران کی اور ایران کے ٹی وی چینلوں کی نشریات بند ہونے کے بعد جو ہماری فریکوینسیاں ہیں ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، نوٹ کر لیں۔ 15 اکتوبر سے ہماری نشریات ہاٹ بٹ بند کر دیے جانے کے بعد کچھ اس طرح سے ہیں، انٹل سیٹ، ایشیا سیٹ اور نئے سیٹ پر ہمارے پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری فریکوینسیاں کچھ اس طرح سے ہوں گی، انٹل سیٹ 20، فریکوینسی 11,090، سمبل ریٹ 25,600، پلورٹی ویٹیکل۔ ایشیا سیٹ S3 105 ڈگری ایسٹ، فریکوینسی 12,376، سمبل ریٹ 17,850، پلورٹی ویٹیکل۔ ایشیا سیٹ فریکوینسی 12,348، سمبل ریٹ 26,660، نائل سیٹ 7 ڈگری ویسٹ، فریکوینسی 12,303، سمبل ریٹ 27,500، پلورٹی ہوریزنٹل۔ یہ تو فریکوینسیوں سے متعلق ہمارا اعلان تھا، اور اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9 اکتوبر کو سوات میں اس وقت دہشت گردی کی ایک اور سیاہ ترین داستان رقم کی گئی جب کم سن طالبہ یوسف زئی، ملالہ یوسف زئی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ اور یہ وہ دہشت گرد ہیں جو اس طرح کے قاتلانہ حملے کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی دہشت گردی کے اس اقدام کو، اس کاروائی کو جواز بنانے کے لیے معاذ اللہ ہمارے انبیاء کرام اور دین اسلام کی بعض جو جائز اور بجا اور برحق کاروائیاں ہیں اس کا ناحق طریقے سے استعمال کر کے اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک انسانیت پر اور ایک بچی پر ظلم ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام اور دین مبین اسلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور اللہ پاک کے دین پر بھی حملہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال چلتے ہیں، اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ 9 اکتوبر کو جو حملہ ہوا اور جس طرح سے حملہ کیا گیا، اس کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی مذمت کی گئی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جس دن حملہ ہوا اس کے ایک دن بعد، دو دن بعد اور 48 اور 72 گھنٹوں تک تو پوری قوم یا دیگر جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں تھیں اس مسئلے پر متفق نظر آئیں کہ یہ حملہ وحشیانہ اور قابل مذمت اقدام ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایسا لگتا جا رہا ہے کہ ملالہ یوسف زئی نہ صرف اس پر قاتلانہ حملہ پاکستان کی سیاست میں ایک حرارت پیدا کر رہا ہے، بلکہ اس کے اس واقعے سے الگ الگ پارٹیاں اور الگ الگ جماعتیں اپنا سیاسی موقف مضبوط کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئی ہیں۔ جب تمام ملک، پورا ملک اس واقعے کی مذمت کر رہا تھا، تو وہاں سے یہ آواز اٹھنے لگی کچھ جماعتوں کی طرف سے کہ اس واقعے کے اصل محرکات پر نظر ڈالنی چاہیے، ڈرون حملوں کی تہہ میں جانا چاہیے۔ اگر ڈرون حملہ نہ ہوتا تو اس طرح کا حملہ ملالہ یوسف زئی پر نہ ہوتا۔ بہرحال، اس طرح کی باتیں کرنے والوں کا جواب دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا جن گروہوں نے ملالہ یوسف زئی پر حملہ کیا ہے، क्या वो ड्रोन हमलों से कबल भी लड़कियों की तालीम के मुखालिफ नहीं थे? ये तो एक अरसे से लड़कियों की तालीम के मुखालिफ थे, उनके स्कूल जाने के खिलाफ थे और स्कूलों पर वो हमला करते थे, स्कूलों की इमारतों को मुनदिम करते थे, उस वक्त तो ड्रोन हमला नहीं था। बहरहाल ये वो सारे सवाल हैं जिनका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सीधे इस्लामाबाद स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर साफी जनाब यावर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। यावर साहब, मलाला यूसुफ़ई जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में तहरीक इल्म की एक अलामत बन गई थी और ख़ास तौर पर कबायली इलाकों में कि वो लड़कियों को तरगीब दिलाती थी, लड़कियों में हौसला पैदा करती थी कि वो रोशनी इल्म की तरफ आएँ और इस रास्ते को अख्तियार करें, उस पर हमला हुआ तो जाहिर है कि तहरीक इल्म पर हमला हुआ, इल्म पर हमला हुआ, तालीम पर हमला हुआ और उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन देखा यह गया कि वक्त गुजरने के साथ साथ न सिर्फ सियासी और जमातें बल्कि बाज़ मजहबी जमातें, या बरक्स कहूँ कि न सिर्फ मजहबी जमातें बल्कि बाज़ सियासी जमातों ने भी इस वाक़े को दूसरे रंग देने की कोशिश की है, और एक ऐसे वक्त जब यह ऐसा लग रहा था कि पूरी कौम मुत्तफिक और मुत्तहिद है तालिबान और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और उसकी मजम्मत करने में, तो लगता है कि ये तकसीम बंदी फिर शुरू हो गई है। क्या ऐसे ही महसूस हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद की गलियारों में?
जी अली अब्बास साहब, बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये मलाला यूसुफ़ई पर जो हमला हुआ है, ये इसके पसपुश जो भी अनासर हैं उनका मकसद इल्म के फ़रोग को रोकना था, इंसानियत के फ़रोग को रोकना था, और जो एक नातवां सी आवाज़ एक बच्ची ने उठाई थी उस आवाज़ को दबाना था। इसमें जिस दिन हमला हुआ उस दिन पूरी कौम इसमें कोई शुबा नहीं के मुत्तफिक थी और तमाम सियासी जमातों ने, लेकिन यहाँ पर जो दीनी सियासी जमातें हैं वो खामोश थीं, वो दबे अल्फाज में इसकी जो है वो मजम्मत तो कर रही थीं, लेकिन अभी वो खुलकर सामने नहीं है। खुलकर सामने उस दिन आए जिस दिन जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान ने बयान दिया कि इसके पसे पुश जो महर्रकात हैं, ड्रोन हमले जो हो रहे हैं, जो अमरीका है, जो इस्तेमारी कुव्वतें हैं, उनको उनकी भी बात की जाए, सिर्फ मलाला पर हमले की बात ना की जाए, उनको भी जो यहाँ पर जो इस खत्े में अमरीका और उसकी कुव्वतें खेल खेल रही हैं उनको भी देखना चाहिए। तो ये अब तो खैर वाजे एक तकसीम हो गई है कि जो दीनी मजहबी सियासी जमातें हैं वो एक साइड पर हैं और सियासी जमातें जो एक साइड पर हैं और उनके साथ जो सिविल सोसाइटी और यहाँ पर गैर सरकारी समाजी तंजीमें जो हैं वो एक साइड पर हैं, तो ये एक तकसीम तो वाजे नज़र आ रही है। लेकिन दोनों तरफ से जो अगर देखा जाए गैर जानबदाराना अंदाज में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा कड़ा वक्त है खुसूसन आलम इस्लाम पर, मुसलमानों पर, और खुसूसन पाकिस्तान के जो अवाम हैं इन पर, कि इनको देखना है कि दुश्मन कौन है हमारा, क्योंकि दुश्मन वाजे नहीं हो रहा है कि अब जो भी कोई वारदात हो उसको तहरीक तालिबान या तालिबान का नाम दे दिया जाता है। ये पाकिस्तान के इस खत्े में हम जब अगर बहसियत एक सहाफ़ी के हम देखते तो यहाँ पर बहुत से प्लेयर्स कारफरमा हैं, इस खत्े में इस्तेमारी कुव्वतें आ चुकी हैं, इस खत्े में सहूनी कुव्वतों की साजिशें चल रही हैं, इस खत्े में और भी जो जिनके मुफादात हैं वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो देखना ये है कि दुश्मन वाज़ दुश्मन कौन है। नो डाउट वाज़ दुश्मन अमरीका और उसकी इस्तेमारी कुव्वतें हैं। अब उसके नीचे जब ये वाजे हो गया कि ये अमरीका इस्तेमारी कुव्वतें और सहूनी कुव्वतें ये इस खत्े में और खुसूसन आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं, तो उन कुव्वतों को सनब करने के लिए उनके जो एजेंट्स हैं उनको अब देखना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी वाकया हो जाए तो सीधा तालिबान पर इल्ज़ाम दे दिया जाए। तालिबान ने जो किरदार अदा किया
यावर साहब
ठीक है, वो भी कोई काबिल सताइश नहीं है, लेकिन उनका नाम तो इस्तेमाल हो रहा है, तालिबान सामने तो आ रहे हैं। अब ये जो
यावर साहब, मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूंगा। यावर साहब, यकीनी तौर पर कम से कम इस वाक़े में तो तालिबान मुलव्वस हैं, उन्होंने खुद ऐलान भी किया है और अपने इस इकदाम को जवाब भी बनाया। उन्होंने जनाब खिज़र और जनाब मूसा के वाक़े का हवाला दिया है कि एक बच्चे को जनाब खिज़र ने कत्ल कर दिया था और कहा है कि ये बच्ची फितना बन रही थी और इसका कत्ल जो है वो हमारे लिए ज़रूरी था और अगर बच गई तो दोबारा हम कत्ल करेंगे। तो जाहिर है कि इसमें तो साफ तौर पर तालिबान मुलव्वस हैं, तो कम अज़ कम इस बच्ची के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसको लेकर तो जो मजम्मत की जा रही है उसके बारे में ये ना बेजाना होगा कि सही है।
मैं बिल्कुल इसी तरफ ही आ रहा था कि ये जो वाकया हुआ है इसमें तहरीक तालिबान ने इसको कबूल किया है कि उन्होंने कहा जी हमने ये किया, ये बच्ची फितना बनती जा रही थी, लेकिन क्या ये इस्लाम का सही रुख है? क्या ये तालिबान जो इस्लाम का नाम ले रहे हैं, क्या वो इस्लाम का सही रुख पेश कर रहे हैं, या कि उनके पसे पुश्त वही इस्तेमारी कुवतें हैं जो इन तालिबान को इस्लाम के नाम पर अपने अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? तो नो डाउट इसमें कोई शक व शुबा अब नहीं रहा कि इन जिन तालिबान ने इनके ऊपर मलाला के ऊपर हमला किया उनके पसे पुश्त इस्तेमारी और सहूनी कुवतों का हाथ है, और उन सहूनी और इस्तेमारी कुवतों के जो जो हुक्मरान पूरी दुनिया में उनके जो उनकी गोद में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं, आप ये देखें कि मलाला के ऊपर पूरी दुनिया ने इसनाब किया है, लेकिन अभी तक अरब ममालिक में से किसी अरब ममालिक के किसी बादशाह ने, किसी वजीर आजम ने, किसी सदर ने कोई इसकी मजम्मत नहीं की है, कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आया। तो ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो तालिबान हैं इनके पीछे इस्तेमारी और सहूनी कुव्वतें हैं। अब जब ये दुश्मन मुशख्खस हो चुका है तो इसके लिए पाकिस्तानी मुआशरे को, पाकिस्तान की ख्वाबो दीनी सियासी कुव्वतें हों या वो सियासी कुव्वतें हों या वो सिविल सोसाइटी हो, तो उनको मिलकर काम करना है कि अपने दुश्मन को पहचाने और तफरके की बजाय या एक जुबान होकर, एक जिस्म होकर, एक कल्ब होकर उनका मुकाबला किया जाए। हमारी जो हुकूमत है उसने कोशिश तो बहुत की है कि ये जो फितना है दहशतगर्दी का, इसको रोकने के लिए काम किया जाए। आज भी वजीर दाखला ने, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि वजीर दाखला ने मलाला के लिए सितारा जुरत जो है, शुजात का जो है, उसने ऐलान किया कि उनको हम देंगे और जो उसके कातिल हैं उनके गिरफ्तारी के लिए 10 करोड़ का इनाम उन्होंने रखा है। तो मकसद ये है कि ये मलाला पर जो हमला किया गया ये एक माइंड सेट है। ये मैं एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ये एक माइंड सेट है, ये वही माइंड सेट है जो रोज़े आफरीनिश से इस्लाम के दुश्मन लोग जो हैं जिन्होंने एक सेट किया था। आप देखें कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के घर पर जो हमला आवर हुए, या उसके बाद करबला में जिन्होंने औरतों के ऊपर जुल्म किए और उनको गिरफ्तार किया, ये वही एक माइंडसेट चला।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिरादरूंगा आपकी सुन्नत में।
उनके पसे पुश्त भी वही कुव्वतें थी, आज भी वही इस्तेमारी और इस्तकबारी कुव्वतें हैं जो इनको फरोग दे रही हैं, और ये इस माइंडसेट को खत्म करने की जरूरत है। और इसके लिए
मैं बिरादरूंगा आपकी सुन्नत में, मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं इस वक्त कराची, जहां पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सरकर्दा सहाफी और मुमताज तर्जनगार यहिया बिन जकरिया साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
यहिया बिन जकरिया साहब, 9 अक्टूबर से लेकर अब तक मलाला यूसुफ़ज़ई पर हुए कातलाना हमले की बाज़गश्त न सिर्फ सुनाई दे रही बल्कि उसमें शिद्दत भी आती जा रही है और सियासी हलकों में भी ये बहस गर्म और दाग है। कहना ये, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे इस्तेमारी कुव्वतें हैं और जिम्मेदारी जो है वो तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने लिए कातलाना हमले की। कहा जा रहा है कि इस्तेमारी और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इसके पीछे हैं और अमेरिका और उसके इत्यादी, उनका नाम लिया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान में बहुत से हल्के ये सवाल कर रहे हैं कि जब इसके पीछे इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं और उन्हीं की हिमा पर यह हमला किया गया है, तो जो पाकिस्तान की मजहबी जमातें हैं उन पर ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के इस तरह के इकदाम की मजम्मत करें, खा वो तालिबान के ज़रिए ही क्यों ना कराए गए?
देखिए, जहाँ तक मजहबी क़ुव्वतों का ताल्लुक़ है तो किसी ने
जी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमारा रबता मुनक़ता हो गया है। चलते हैं यावर बुखारी साहब, जहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हमारे स्टूडियो में। यावर साहब, आज इस मसले पर एक कौमी इत्तेफाक़ राय होना था कौमी असम्बली में और एक क़रारदाद हुकूमत की तरफ से पेश की जानी थी, वो पेश की भी गई लेकिन वो अदम इत्तेफाक़ की वजह से पास ना हो सकी, ऐसा क्यों?
चूँकि एक वादे तकसीम इस मसले के ऊपर आ चुकी है, जो दीनी मजहबी कुव्वतें हैं वो एक तरफ हो गई हैं और उनका यह कहना है कि अगर मलाला पर हमला किया गया, वो एक जवाब पेश कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम उस जवाब से मुत्तफिक नहीं है और कौम समझती है कि ये एक लेम एक्सक्यूज़ किया जा रहा है मजहबी जमातों की तरफ से। जो भी गलत काम कर रहा है उस गलत काम को गलत कहना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि उसके पसे पुश्त कौन है, क्या है, क्या कौन नहीं है। जो लोग सामने चेहरा इस्तेमाल हो रहा है, आज ये बिल्कुल हमारा पूरा मीडिया ये कह रहा था कि ये जो है इसके ऊपर एक करारदाद कौमी असम्बली में आनी थी, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया जाना था, चूंकि कौमी असम्बली में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में अगरचे वो जमीयत उलमाए इस्लाम जो हैं वो अलग हो चुके हुए हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अभी भी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं और पसे पर्दा समझा यही जाता है कि वो हुकूमत की इत्तेहादी हैं और अपोजिशन भी उनको अपना, क्योंकि खुल के वो ना अपोजिशन में है ना वो खुल के हिजब इकतदार में है, तो इस वजह से शायद हुकूमत की ये मजबूरी बनी है कि हुकूमत ये करारदाद नहीं ला सकी, और बल्कि होना तो ये चाहिए था कि अगर हुकूमत नहीं लाई तो अपोजिशन की तरफ से आ जाती, लेकिन शायद अपोजिशन भी जो है वो भी हक को हक कहने की तरफ नहीं आ रही है, वो भी अमेरिका का, चूंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं और पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि जो अमेरिका की जिसको खुशनुदी हासिल हो उन्हीं की हुकूमत बनती है, तो शायद इस लम्हे में जबकि ये समझा जा रहा है कि 4-5 माह के बाद आम इंतखाबात मुल्क में होने वाले हैं, तो शायद हुकूमत या अपोजिशन या दीनी जमातें कोई भी अमेरिका की जो है वो नाराजगी मोल लेने को तैयार नहीं है, तो इस वजह से आज ये करारदाद असेंबली में पेश नहीं की जा सकी। इसका एक तोड़ करने की कोशिश की गई है कि वजीर दाखला ने ये ऐलान तो किया है कि उनको मलाला यूसुफ रई जो है उनको सितारा शुजात दिया जाएगा और उनके कातलों पर इनाम रखा गया है और ये सारी बात तो हुई है, लेकिन एक वादे तकसीम है, इस तकसीम में देखना ये है कि मुशख्स ये करना है कि हमारे कौम का दुश्मन कौन है, ख्वाबो तालिबान है, ख्वाबो अमरीकी तालिबान है, ख्वाबो अफगानी तालिबान है, कोई भी है जो भी हैं, उनको आज वजीर दाखला ने यह भी कहा कि जी ये साजिश जो है ये अफगानिस्तान में तैयार हुई, अगर अफगानिस्तान में तैयार हुई तो क्या हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आपके यहाँ ये जो साजिश तैयार हुई है इसके ये सबूत हैं, ये आपके यहाँ से इधर हमला आवर आए हैं, अगर वहाँ के हमला आवर आए हैं यहाँ और अफगानिस्तान से हमला आवर पाकिस्तान में आकर उन्होंने हमला किया है तो फिर तहरीक तालिबान क्यों इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रही है, तो ये एक बड़ा एक ऐसा पेचीदा मामला है कि इस मामले पे पूरी कौम को सोचना होगा कि कौन दुश्मन है, कौन हक पर है, कौन गलत है, जब तक ये चीज सामने नहीं आएगी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ओआईसी कहां है जो कि पाकिस्तान जो
यार साहब, मैं फिर आ जाऊंगा, बहुत शुक्रिया आपका, चलते हैं लंदन स्टूडियो,
ओआईसी की तरफ से भी
जी यावर साहब नाजिश आपकी, चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां पर मौजूद हैं इस वक्त हमारे मोजज मेहमान डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्राबी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अंद्राबी साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी बजाय ऐसा लगता है कि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, बहरहाल मैं फिर माजरत चाहता हूँ अपने नाज़रीन से, एक बार फिर चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो। जी यावर साहब, बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त एक सवाल ये उठ रहा है बाज़ हलकों की तरफ से कि इसमें कोई शक नहीं कि यह वाकया इंतहाई काबिल मज़म्मत है, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, एक मासूम बच्ची पर इस तरह का कातिलाना हमला किया गया, उसकी जान लेने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ एक ही मलाला पर कातिलाना हमला हुआ हो पाकिस्तान में? ड्रोन हमलों में कितनी मलालाएं मारी गई हैं, कितनी मासूम बच्चियों की जान ली गई है अफगानिस्तान में, इराक में, आए दिन कितनी मासूम बच्चियां जो शादियों की तकरीबात में जाती हैं, जो स्कूलों में रहती हैं, जो खेलती रहती हैं, उन पर बम बरसा के अमरीका और अमरीकी फौजी कितनी मासूम बच्चों की जान लेते हैं, तो इस वक्त मलाला के वाक़े पर मैं पाकिस्तानी कौम और दुनिया की कौम जो बेदार और आज़ाद ज़मीर है उससे हटकर कौमें जितनी भी मजम्मत करें कम है, लेकिन अमेरिका को क्या हक पहुंचता है कि वो इस वाक़े पर मगरमच्छ के आंसू बहाए? क्या इसके पीछे कुछ दाल में काला नहीं लग रहा है कि अमेरिका इस वाक़े से कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ?
जी बिल्कुल, मैं तो ये पहले ही कह चुका हूँ कि इस वाक़े के पीछे पसे पुश्त इस्तेमारी और अमरीकी कुव्वतों का हाथ है, जो इस खिते में और मुसलमानों के खिलाफ और पूरी दुनिया का अमन तबाह करने के दर पे हैं, तो ये बात तो ये तो मुशख्खस है, ये तो बिल्कुल तय है कि अमरीका, मगर ये एक बहुत बड़ी मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी ममालिक खुसूसन जो हमारे मुसलमान ममालिक हैं इनके एक प्रॉब्लम ये है कि इनमें अक्सरियत ममालिक के अवाम तो बेदार हैं लेकिन उनके ऊपर एक ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं जो बिलवास्ता या बिलावास्ता अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं और अमेरिकी मुफादात पे वो आमीन और सदकना आमीन कहते हैं, तो ये एक बहुत एक ऐसी गंभीर सिचुएशन है जिसमें अवाम और हुक्मरानों के दरमियान वादे तफावत नजर आ रही है। यही हुआ है कि ये जो हमला हुआ मलाला के ऊपर और इससे पहले ड्रोन हमलों में जो इतने लोग मारे गए हैं, यही आप देखना। अब एक बात ये हो रही है कि दीनी जमातें कह रही हैं कि ड्रोन हमलों में जो मारे गए हैं उनकी भी बात की जाए। अमरीका ने क्या किया कि मलाला के ऊपर उसने एक तरफ हमला करवा दिया है, दूसरी तरफ वो हमदर्दियां भी लेने की कोशिश कर रहा है, जिसके बायस जो है वो सारी सिविल सोसाइटी और ये सारे कुछ इकट्ठे हो चुके हुए हैं। तो ये सारी साजिश जो है, इस साजिश को तदब्बुर के साथ देखना होगा कि ये एक साजिश जो मुसलमानों के खिलाफ और खुसूसन इस खित्ते में, इस खित्ते के ममालिक ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इससे पहले हम इराक में भी देख चुके हैं, अब शाम तक भी इसका दायराकार बढ़ रहा है। अगर ये अरब ममालिक इसी तरीके से सोए रहे तो ये इसका दायरा, इस अमरीकी इस्तेमाली साजिश का दायरा उन तक भी बढ़ेगा। कल को आज मैं आपको पेशेंगोई कर सकता हूं वाजे इसी ये जो उनके जो साजिश है और उनका जो ये वतीरा है उसके ऊपर, कि ये कल को ये खामोश ना रहे कि उन तक नहीं जाएगा या सऊदी अरब तक जाकर ये बात थमेगी, ये
साजिश
है। ये आज अगर पाकिस्तान जल रहा है तो इससे कोई और मुल्क बचेगा नहीं। ये मुसलमान ममालिक को इसके ऊपर जो है मुतहिद होना होगा। देखें गुस्ताखाना खाके चले अमेरिका में चले, उनकी टाइमिंग देखें कि वो उनका इंतखाबात हो रहे हैं।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा यार साहब, माफ कीजिएगा, चलते हैं एक बार फिर लंदन स्टूडियो, मुमकिन है या यकीनी तौर पर अब आवाज़ बेहतर हो गई होगी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
जी डॉक्टर साहब, बात हो रही है मलाला यूसुफ जई जो एक अलामत बन चुकी है पाकिस्तान में तहरीक इल्म व तालीम की, उस पर कातलाना हमला हुआ और जिस जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन पाकिस्तान में बाज़ जमातों की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस वाकये की जड़ को क्यों नहीं तलाश किया जाता और इसकी जड़ को ड्रोन हमलों में देखा जाना चाहिए। क्या हमला करने वाले ड्रोन हमलों से कबल लड़कियों की तालीम के मुखालिफ नहीं थे, उससे पहले वो इस तरह की पाबंदियां लड़कियों पर आए दिन नहीं करते थे? तो ये जो जमातें इस तरह की बातें करके जहनों को मोड़ रही हैं, उसके पीछे क्या मकासद और क्या सियासी मुहरकात हो सकते हैं आपके ख्याल में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने सही फरमाया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। एक मासूम बच्ची पर हमला, और वो भी जबकि वो एक ऐसे कॉज की अलमबरदारी कर रही थी जो कि एक बहुत सही कॉज है, इन्हें तालीम का, इल्म का। मैंने खुद उस मलाला यूसुफजई का एक इंटरव्यू अभी सुना जो उसने जनवरी में दिया था पाकिस्तान की एक टीवी चैनल को, तो मैंने उस इंटरव्यू में उसको देखा, उसको मैंने सुना कि वो क्या कह रही है, तो उसके मुझे बहुत ही मासूमियत और माकूलियत उसमें लगी। यानी अच्छी सही बातें कर रही हैं और एक छोटी बच्ची और एक अच्छे कॉज के साथ वो मुतहरिक हुई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उस पर कातलाना हमला जो है ये बहरहाल बहुत ही काबिल मजम्मत है। लेकिन मैंने आपके दूसरे मेहमानान हजरात जो हैं उनकी गुफ्तगू तो नहीं सुनी, थोड़ा सा मैंने ये भी सुना अमेरिका के बारे में जो मेरे पेशरो मुकर्रर बात कर रहे थे। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि ये जो बात है कि इसकी वजह हमें ड्रोन हमलों में तलाश करनी चाहिए, तो ये सही बात नहीं है। यानी अगर ये ज़रूरी होता है कि आप हमेशा किसी वाक़े को देखें कि वाक़ा है क्या और उसकी जड़ क्या है, ये ज़रूरी है। लेकिन ये जड़ जो है वो ड्रोन हमलों में नहीं है, इसकी जड़ जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी में है जिसने पाकिस्तान को लपेट में लिया है, और वो सिर्फ तालिबान की हद तक महदूद नहीं है। मैंने इससे पहले भी ये गुजारिश की है कि ये एक ऐसे मुसीबत पाकिस्तान में आ गई है इंतहा पसंदी की, और इसके पीछे जो 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 क्वार्टर्स हैं जो कर रहे हैं ये, और ये भी हमें मालूम है कि ये सारा कुछ वहाँ बेशतर इसका 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 बेशतर पोर्शन और इस ये जो शुरू हुआ ये उसी वक्त से शुरू हुआ जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में इन्वॉल्व हो गया और दुनिया हर 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 मुल्क से लोग आ गए, तो ये सारा कुछ उस वक्त से शुरू हुआ और अब भी रोज अफजूं ये इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो मेरी ये समझ है कि ये इसका इसका हमें इसका इसका जिम्मेदार जो है हमें हमें अपने आप को बिरयुज़्ज़िमा नहीं समझना चाहिए और सारा कुछ हम अमेरिका पे डालें। अमेरिका क्या कर रहा है, इस्तेमार क्या कर रहा है, ये हर कोई समझ रहा है, ये हमें मालूम है। लेकिन ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि अगर उनको मकामी हाथ न मिले, अगर उनको मकामी तौर पर अपने हमदर्द और अपना काम करने वाले लोग ना मिले तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता है। ईरान इसकी एक मिसाल है। अमेरिका तो ईरान को तहस नहस करना चाहता है, उसके ईरान के इस्लामी इनकलाब के खिलाफ बहुत ही उसके जहरीले अजाइम हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ उसको कामयाब नहीं करती वहाँ, तो वो यही है कि उसका एक लोकल बेस नहीं है वहाँ। मेरी गुजारिश है कि अमेरिका ने सऊदी ममलकत के जरिए और सऊदी डॉलर्स के जरिए और सऊदी जो वहाँ नामनिहाद उलमा जो आले सऊद की खिदमत में लगे हैं उनके जरिए से पाकिस्तान में एक पूरा जाल बिछाया है और हमें उसको देखना होगा। हम सारा कुछ अमेरिका को शिफ्ट करें तो ये बिल्कुल एक बहुत कोताहंदेशी है और ये खैरख्वाही नहीं है, ना पाकिस्तान के साथ, ना अवाम के साथ, ना दुनिया के साथ, किसी के साथ भी नहीं। तो मेरी ये गुजारिश है कि इसकी इसके वजूहात जो है वो हमें सही तौर पर तलाश करने चाहिए और मेरी गुजारिश है कि वो मजहबी इंतहा पसंदी में है और उसकी तरफ हमें मुतवजा होना चाहिए पाकिस्तान में और उसका उसके तदारुक के लिए इकदाम करने चाहिए। ये मेरी गुजारिश।
बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब। बाज़ हलके ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस वाक़े को बहाना बनाकर शुमाली वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, क्या ये तासुर सही है?
नहीं, ये कहा तो जा रहा है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने पहले भी अमेरिका को इनकार कर दिया था और अभी ये जो हमारे एक खुफिया एजेंसी के सरबराह वहाँ अमेरिका गए थे, वहाँ पर भी उनसे ये मुतालबा किया गया था तो उन्होंने वहाँ पर भी इनकार कर दिया था और कहा था इसका फैसला हमारी कौम करेगी, हमारी कौम जो है वो उसके ऊपर जो उन्होंने अपने नुमाइंदे चुने हुए हैं, सियासी नुमाइंदे चुने हुए हैं। अभी ये परसों चौथ भी बयान आया था आर्मी चीफ का और उन्होंने भी ये कहा कि इसका फैसला जो है ये सियासी क़यादत करेगी, जबकि हुकूमत की तरफ से ये आया कि इसका फैसला सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत बाहम मिल बैठ कर करेंगी। ये तो अब ये इसके बारे में ये इबहाम पैदा करना है कि ये वाक़ा जो हुआ है इसकी आड़ में, इसका मतलब है ये वाक़ा फिर हुकूमत ने खुद करवाया या फौज ने खुद करवाया, ये बिल्कुल सरासर लगव और ये इल्ज़ाम है और ये बात नहीं है। असल में एक्चुअली ये बहुत गंभीर साजिश है, बहुत पेचीदा साजिश है, इसको समझना होगा। जो मसाइल की जड़ है, जो साजिश की जड़ है, बिला शुबा वो अमेरिका है। अमेरिका ने ही पूरी दुनिया का अम तबाह किया हुआ है, अमेरिका ही एक गुंडे का किरदार अदा कर रहा है पूरी दुनिया में ताकत के नशे में। अमेरिका जो है वो ताकत के नशे में जिसको चाहता है वहाँ पर हमला कर देता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। अमेरिकी लोग वहाँ पर जो है, जो उनके अमेरिकी आवाम में से जो लोग अपनी हुकूमत के जो इस मुजालिम में शामिल हैं वो अगर चाहें तो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और अक़वामे मुत्तहिदा जो है वो अमेरिका की लौंडी बनी हुई है, ये इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम ये जो दुनिया में बदअमनी और खुसन इस खित्ते में ये जो हालात ख़राब हुए इसके पीछे अमेरिका है। अब दूसरी बात लेते हैं, दूसरी बात ये है कि ये जो इंतहा पसंदी की बात हुई है, ये इंतहा पसंदी यहाँ पाकिस्तान में है, इस इंतहा पसंदी को फैलाने में भी अमेरिका का हाथ है, इसके पसे पुश्त भी अमरीकी कुव्वतें हैं। एक तरफ असल में वो पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान को अंदर से खोखला करना चाहते हैं, इसलिए जो भी वाकया हो पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने का, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का, पाकिस्तान की आवाम को आपस में लड़ाने का, पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद फैलाने का, पाकिस्तान में लसानी फसादात फैलाने का, जो भी वाकया हो इसके पसे पुश्त अमरीकी इस्तेमारी और इस्तकबारी कुव्वतें हैं, सेहूनी कुव्वतें हैं। और हमारे लोग, यही लोग जो सदियों से ये आलाकार बनते आए हैं उस माइंड सेट का कि जो इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाता है, जो शिद्दत पसंदी की तरफ, और यही लोग वो इस्तेमाल हो रहे हैं।
शुक्रिया आपका।
अब देखना ये है कि जिन्होंने ये हरकत की है मलाला के ऊपर, उन्होंने वो ये कहते हैं कि हम ड्रोन की वजह से कर रहे हैं। लेकिन उनको जो पीछे से कुव्वत मिल रही है वो अमेरिका ही की तरफ से मिल रही है। अब वो ऊपर से अमेरिका के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के मुआशरे को कमज़ोर करने के दर पे हैं। एक मासूम बच्ची सिर्फ क्या एक अपनी तहरीरें लिख रही थी कि ये जुल्म हो रहा है, यहाँ पर औरतों को जो है वो नहीं निकलने दिया जा रहा, यहाँ पर बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा, स्कूलों पर हमले किए जा रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम कहता है कि स्कूलों पर हमले किए जाएं? ये किस इस्लाम?
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर हाजिर हूँ यार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अंद्राबी साहब, आप देखें कि इस वक्त जब पूरी दुनिया में जो बेदार ज़मीर इंसान हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ अनासिर या बाज़ जमातें क्यों नहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उसका नाम लेकर मजम्मत करती? क्या ये बेहतरीन मौका नहीं था कि तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक आवाज़ होकर, एक जबान होकर अगर मजम्मत करती तो इस तरह के इंतहा पसंद ग्रोहों के हौसले पस्त होते? और अगर मजम्मत नहीं किए तो क्या आप नहीं समझते कि इससे उनके हौसले और बुलंद होंगे? बजाय ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही अब तक। जी यार साहब, अगर आपने मेरा सवाल सुना होगा तो मैं आपसे इसका जवाब चाहूँगा।
बिल्कुल, मैंने आपका सवाल सुना है। मैं ये कहता हूँ, बिल्कुल ये एक वक्त था कि इस वक्त में हमारी जो दीनी मजहबी जमातें हैं उनको खुलकर ये जिन लोगों ने मलाला पर हमले की जो है वो जिम्मेदारी कबूल की है, उनके खिलाफ खुलकर बात करनी चाहिए थी ताकि उनको हौसला ना मिले। अगर ये समझा जाए कि अगर आप लेम एक्सक्यूजेस करते रहे कि जी इसके पीछे ड्रोन है, इसके पीछे फलां हैं, हम ड्रोन की कौन सी हमायत कर रहे हैं या हुकूमत पाकिस्तान ड्रोन की कौन सी हमायत कर रही है? पाकिस्तान के अवाम भी तो ड्रोन की हमायत नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इसकी भी तो इजाज़त नहीं दे सकते कि मासूम बच्चियों के ऊपर हमला किया जाए, स्कूलों के ऊपर हमला किया जाए, इल्म के ऊपर हमला किया जाए, इसकी भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस वक्त ये एक मौका था कि दीनी मजहबी जमातें खुलकर इनका तहरीक तालिबान जो है जिन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है इसके वो करती जो है जिम्मेदार इनके खिलाफ खुलकर बात करती और उनकी इसकी मजम्मत की जाती। कि अदरवाइज तो ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इंतहा पसंदी जो है उनको इंतहा पसंदों को हौसला मिलेगा और वो उनको पता है कि अगर वो कोई भी एक्ट जालमाना एक्ट करेंगे, कोई भी दहशतगर्दी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उनके जो है उनको शेल्टर मिल सकता है। उनके जो दीनी जमातें हैं वो समझती हैं कि शायद वो उनके करीब हैं और वो इस तरीके से ये सारा कुछ हो सकता है। तो इसमें दीनी जमातों के ऊपर इस वक्त बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की, और ना सिर्फ ये कि जिनको मुशख्खस कर दिया जाए कि यह शिद्दत पसंद है, बल्कि इस सोच की, इस नजरिए की, शिद्दत पसंदी के नजरिए की जो है हौसला शिकनी की जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान के मुआशरे में ये जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है, इंतहा पसंदी है, और असल में एक्चुअली ये शिद्दत पसंदी का एक जो यहाँ पर उनसर आया वो यही अमेरिकी गुमाश्तों ने जो यहाँ पर इस खिते में।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर हाजिर हूँ यार साहब।
वो 80s में
नाजिश आपकी। चलते हैं एक बार फिर कराची, जहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सरकर्दा तर्ज़-ए-निगार, जैसा मैंने पहले अर्ज किया था, यहिया बिन ज़करिया साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
माफ़ कीजिएगा जनाब, लाइन कट गई थी। मैंने आपसे एक सवाल किया था, अगर आपको सवाल याद हो वो ये कि पाकिस्तान में बाज़ हल्के ये सवाल कर रहे हैं कि जब एक मासूम बच्ची पर इस तरह का कातिलाना हमला हुआ है और लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों ने किया, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, तो पाकिस्तान की मजहबी जमातें सीना तान कर, सीना ठोक कर बजा तौर पर अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, तो जिन लोगों ने अमेरिका की ईमा पर यह इकदाम किया है और कहा जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर किया है, तो पाकिस्तान की मजहबी जमातें, ये बाद हल्कों का ख्याल है कि क्यों उनका नाम लेकर मजम्मत नहीं करती जबकि ये इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की ईमा पर यह हमला किया गया?
ये असल इशू को डाइवर्ट करने का सवाल है। असल बात जो है वो ये है कि ये हमला सवात के अंदर हुआ है। सवात में फौज काफी तवील अरसे से फौजी ऑपरेशन कर रही थी और उसने ये दावा किया था कि हमने इस इलाके को दहशतगर्दों से बिल्कुल पाक कर दिया है और इस बात का ऐलान करने वाली थी कि अब हम कुछ दिनों के बाद इस इलाके के कंट्रोल सिविलियन इंतजामिया के हवाले कर देंगे, लेकिन इस दरमियान के अंदर ये एक प्रसार वाकया हुआ है और ये इस तरह के कत्लो गारतगरी का वाकया कोई खास वाकया नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुसलसल जारी है। और अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे और रियासती इदारे इस सिलसिले में जो कातिल और मुजरिम है चाहे वो कोई भी हो उनको दायरे में लाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। सूरत हाल ये है कि कराची से लेकर पिशावर तक और गवादर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जो दहशतगर्दी से खाली हो। हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि तकरीबन 11 साल से वॉर ऑन टेरर के नाम पर पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे अमरीकी CIA अमरीकी फौज के पार्टनर्स बन चुके हैं और उनको सारी मालूमात फराहम करना, उनकी मदद करना उनकी जिम्मेदारी है। हमें इस पस मंजर को भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर राय आमा अमरीकी अजायन के शदीद तरीन खिलाफ है और वो शदीद तरीन राय की खिलाफ वर्जी का उरूज तौहीन रसालत के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम की तहरीक थी। इस दरमियान के अंदर जो है वो ड्रोन हमलों के खिलाफ हर सतह पर एक इत्तफाक राय भी जो है वो मौजूद हो गया था और जाहिर बात है कि तकरीबन इस अरसे के अंदर 50,000 के करीब अफराद पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से वो मर चुके हैं, वो कत्ल हो चुके हैं। इस सिलसिले में एक ये वाक्य पेश आया, इस वाक्य को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करना और इस बात का मुतालबा करना कि जो मजहबी जमातें इसकी मदद नहीं करती इशू को जो है डाइवर्ट करने से मुतरादित है। असल मसला जो है वो ये है कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के खुफिया इदारे और मुख्तलिफ किस्म की खुफिया तंजीमें काम कर रही हैं।
लेकिन यह बिन ज़करिया साहब, पाकिस्तान की इस्लामी दीनी और मजहबी जमातें इन लोगों की इन बातों की मजम्मत तो कर ही सकती हैं जिन्होंने ये ऐलान किया है कि बच्ची फितना पैदा कर रही थी और जो इस्लाम के वाकयात को गलत रंग देकर और गलत बहाने से पेश करके जवाब बनाते हैं कि सदर इस्लाम में भी इस तरह के वाकयात हुए थे और कत्ल हुए थे और जनाब मूसा और खिजर का वाकया पेश करते हैं कि जनाब खिजर ने भी एक बच्चे को इस तरह से कत्ल कर दिया था, तो क्या ये इस्लाम की तौहीन नहीं? इन बातों की तो मजम्मत कर सकती हैं मजहबी जमातें।
कौन लोग हैं वो बरसर जमीन हमारे सामने नहीं है, वो मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक तरह की जेर जमीन तंजीम है, उसको कौन लोग चला रहे हैं, उसके नुमाइंदे कौन हैं, वो अफराद कौन हैं, वो ये ख्यालात पेश कर रहे हैं, वो हमारे सामने नहीं है। ये जिम्मेदारी खालसतन असल मसला है पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान का सयाम, असल मसला है पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारतगरी को रोकने का इकदाम। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसके तहत सूबा बलोचिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां बलोचिस्तान के अंदर लोगों को गायब कर रही हैं और मुख्तलिफ जो है वो मफशुदा लाशों के मिलने की वारदातों के अंदर मुलविस हैं। इसी तरीके से ये बेशुमार एक वाकया नहीं, कितने वाकया, कितने लोगों को जो है वो मजम मारा गया है और उसका असल मकसद क्योंकि सिर्फ ये है कि एक खास ताबीर जो है वो पैदा की जाए और ये बताया जाए कि दरअसल जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो उसकी जिम्मेदार अमरीका और अमरीका के आलाय का रुकमरा नहीं है बल्कि वो बाद मजहबी तंजीम है और वो मजहबी तंजीमें कौन है जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं। जहां तक जो है वो जो तसव्वुरात और ख्यालात का मसला होता है जो हम आमने सामने बैठकर उनसे बात करते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के खराबियां भी पैदा होती हैं, उसमें इंतहा पसंदी भी होती है, लेकिन ये जो मजहबी इंतहा पसंदी का नारा है ये खालतन अमरीकी नारा है। इसलिए इसको और ये बात क्योंकि इस पस मंजर में बहुत अहमियत रखती है कि
लेकिन ज़करिया साहब क्या इसको आप इंतहा पसंदी नहीं कहते कि जो सवात में या दीगर इलाकों में जो तालिबात या लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की जाती है, स्कूलों को जो बम धमाकों से उड़ाया जाता है, यह इंतहा पसंदी नहीं है? ये
देखिए 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 बात यह है कि ये वो सारी वो चीजें हैं कि जो बहुत ही प्रसार वाकयात हैं, मतलब ये खास चीज पर जो है मतलब फोकस किया जा रहा है, पूरे उस अरसे के अंदर पूरे इलाके के अंदर लड़ाई हो रही है और जाहिर है कि ये वो लड़ाई है जिसको गैर रवायती जंग कहा जाता है जिसमें आपकी पुलिस आपकी एजेंसियां जो इसमें काम कर रही हैं। असल मसला है कत्लो गारतगरी का खात्मा और रोकना, ये हुकूमतों और हुक्मरानों की जिम्मेदारी है और ये पाकिस्तान की हुकूमत इसको रोकने में किसी किस्म की जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
यह बिन ज़करिया साहब आप ही से पूछूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मलाला यूसुफ़ज़ई पर हमले की जो वजूहात और उसके असबाब को ड्रोन हमलों में तलाश करना चाहिए, लेकिन क्या जिन लोगों ने मलाला यूसुफ़ज़ई पर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तहरीक तालीम और इल्म की अलमबरदार थी, जिन लोगों ने हमला किया है, क्या वो ड्रोन हमलों से पहले लड़कियों पर पाबंदी नहीं आयद करते थे, तालीम हासिल करने के ताल्लुक से वो हमले नहीं करते थे स्कूलों पर?
देखिए, ये मसला पाकिस्तान के अंदर तालीम का मसला बिल्कुल एक अलग मसला है, और पाकिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर का बिल्कुल अलग मसला है, और इस चीज को जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है वो अलग अलग डील करना चाहिए। असल मसला यह है कि पाकिस्तानी राय आम्मा के अंदर अमरीका अपने मौकफ की जंग हार चुका है, और उसे यह साबित करना है कि वो जिस दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर वो इस खत्ते के अंदर आया है और उसने पूरे खत्ते को अपना गुलाम बना लिया है, वो इस खत्ते के अंदर जस्टिफाइड है। वो पाकिस्तानी आवाम को ये बताना चाहता है कि दहशतगर्दी वाकईतन एक मसला है, और ये जाहिर बात है कि ये इन मसाइल का हल तलाश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, तालीम फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर ग्रोह नहीं है कि जो किसी को जो है वो तालीम से जो है वो रोकता हो। आप मुझे मतलब बताएं कि ये जो कराची के अंदर जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है, यहाँ इस कराची के अंदर क्या हो रहा है, और यहाँ की जो है वो दहशतगर्दी कौन कर रहा है, कौन सा ग्रोह ऐसा है कि जिसको हदफ नहीं बनाया गया, और ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जिसके नतीजे के अंदर पुरमन सियासी और दीनी जद्दोजहद करने के रास्ते यहाँ पर बंद किए जा रहे हैं।
मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ। यावर साहब, यहिया बिन ज़करिया साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में कोई ग्रोह ऐसा नहीं है जो तालिबात या लड़कियों की तालीम के हुसूल की राह में रुकावट बनता है या पाबंदी का कायल हो, आप क्या उनकी बात की तायद करते हैं?
देखें देखें जी अली अब्बास साहब, ये आलम इस्लाम की बदबख्ती है कि आलम इस्लाम में इल्म के साथ साथ जहालत भी साथ चलती रही है, और ऐसे ग्रोह ऐसे लोग साथ साथ चलते रहे हैं जो इस्लाम की अपनी तशरीह तावील करते हुए अपने आप को दुरुस्त करार, ना सिर्फ अपने आप को दुरुस्त करार देते रहे हैं बल्कि अपनी राय इम्पोज करते रहे हैं कि जो इस्लाम की तशरीह वो कर रहे हैं उसी तशरीह को तस्लीम किया जाए, वगरना आप काबिल गर्दन जदनी होंगे, आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये वही एक माइंडसेट चलता आ रहा है जो अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं, हम यहाँ तारीख के जो जिस दायरे में हम पहुँचे हैं वहाँ उसको महमीज़ इसलिए मिल गई कि उनके पस पुश्त इस्तेमारी कुवतें आ गईं, उनके पस पुश्त इस्तकबारी कुवतें आ गईं, उनके पस पुश्त सहूनी कुवतें आ गईं, और उन्होंने इसको महमीज़ दी, और क्योंकि उनके अपने अजायम थे कि आलम इस्लाम को पारा पारा कर दिया जाए, आलम इस्लाम के इतिहाद को पारा पारा कर दिया जाए। लेकिन ये एक खुशबख्ती की बात है, मैं बिल्कुल मायूसी की पिक्चर नहीं कायल मैं खींचना चाह रहा, मैं एक तजिया आपको दे रहा हूँ कि ये खुशी की बात है कि आलम इस्लाम के जो अवाम हैं वो बेदार हैं, वो जाग रहे हैं, और वो इस्तकबारी कुव्वतों की जो साजिशें हैं उनको समझ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो लोग आज ड्रोन हमलों का बहाना बनाकर मलाला के ऊपर हमले का जवाब पैदा करना चाह रहे हैं, वो इन लोगों ने ही पहले स्कूलों को, अब भी ये स्कूलों को उड़ा रहे हैं, अभी ये जो है ना वो तालिबात पर तालिब इल्म, यहाँ तक कि जो बात कोई बंदा सच बात करता है, अब हमारे मीडिया के जो मीडिया हाउसेज हैं कुछ उनको भी थ्रेट दिए जा रहे हैं, मीडिया पे जो लोग जो बात कर रहे हैं इस चीज़ की सच बोलने की कोशिश करते हैं उनको भी थ्रेट दिया जा रहा है। तो ये इस साजिश को समझना होगा, इसमें हमारे जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो उनको ये सोचना होगा कि वो किस तरीके से ये जो एक साजिश हुई है इस्तकबारी कुव्वतों ने साजिश की है, और उन कुव्वतों को उन्होंने तवाना करने की कोशिश की है कि जो बज़ाहिर तो इस्लाम का नाम ले रही हैं लेकिन उनके उनके अजायम उनके जो काम हैं,
बहुत शुक्रिया यार साहब, बहुत शुक्रिया,
बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में, इस्लाम बदनाम हो रहा है, तो
बहुत शुक्रिया।
रोकने के लिए
यहिया बिन ज़करिया साहब
कोई ना कोई इकदाम किए जाने चाहिए।
यहिया बिन ज़करिया साहब, आपने इनकी बात सुनी, और तालिबान की तरफ से बयान आया था कि हम मुख्तलिफ शहरों में मीडिया के दफातर पर भी हमला करेंगे, क्या पाकिस्तान की मीडिया ने इस्लाम मुखालिफ कोई मुहिम छेड़ी थी जो उन्होंने इस तरह की धमकी दिया?
देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से एक तेरे जमीन खुफिया तंजीम है जिसका कोई मुस्तनद नुमाइंदा हमारे सामने नहीं है, उसके सारे पैगाम भी जो है वो उमूमन तौर पर जो है वो मगरबी न्यूज एजेंसियों के जरिए सामने आते हैं। इसलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियों की वॉर जारी है, उनके असरात यहाँ पर बहुत मतलब
طور پر موجود ہیں اس کے سلسلے میں جو ہے وہ پرسرار قسم کے مواقعات پیش آ رہے ہیں. اس اعتبار سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بھی دہشت گردی کی کسی قتل و غارت گری کو جواز پیدا کرنے کی کوشش کرے, کوئی جواز پیدا کرے. لیکن اس سلسلے میں اس حقیقت کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وار آن ٹیرر کے نام پر پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر ڈالر آ رہے ہیں, اور یہ سارے ڈالر اور یہ بڑی رقوم سارے کے سارے جو ہیں یہ ذرائع ابلاغ کی طرف بھی آ رہے ہیں, اور ان کی نظر میں جو ہے وہ پاکستان کی رائے عامہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس لیے یہ وہ بات ہے جو بات مطلب کہی جا رہی ہے. اس وجہ سے جو بنیادی طور پر لوگ صرف اتنی بات کر رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے کہ جو ہے وہ ملالہ پر حملہ کیا جائے, اس لیے کہ کرائے کے قاتل ہمیشہ جو ہے وہ
بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی. بہرحال ملالہ پر حملہ قابل مذمت ہے. اب اس کے پیچھے جو لوگ اپنی اپنی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں. اگلے دنوں تک بہرحال یہ بات سامنے آئے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے بس اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.